کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت مرنے والے کو۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور صبح خیر ناظرین و حضرات۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اور آپ سب کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتی چلوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک پیاری سی خوبصورتی صبح کا آغاز ہمارے گرما گرم پروگرام صبح زندگی کے ساتھ کر چکے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خورم جی، السلام علیکم جی، خورم۔
سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی اور اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں بھی، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے دن یہ عہد کر سکیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کو پڑھنے کی، ان کی زندگی کو جاننے کی، اور ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی، اور الہی آمین۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جیسے کہ رباب نے کہا ایک خوبصورت پروگرام لے کے وہ آئی ہیں آپ کی خدمت میں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا لے کے آئی ہیں آپ کے لیے۔
جی میں آج تو خیر کچھ خاص چیزیں لے کے آئی ہوں، اور آج ناظرین آپ کے لیے کچھ خاص باتیں بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارا موضوع پروگرام کا جو موضوع ہے آج تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یا ہم نے کچھ نئی چیزیں شامل کی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا
انشاءاللہ۔
تو یہ سرپرائز ہے، ہمیں باتیں بتائیں گے
جی، بعد میں بتائیں گے۔ اور ایک اور جو چیز بتاتے چلیں کہ وہ ہمارا جو ہفتے کا موضوع ہے، جیسے نیچے آپ کے لکھے ہوئے آ گیا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بہرحال اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں،
کہاں سے شروع ہوتا ہے، کس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کے کوئی بھی اس بارے میں رائے ہو آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم فیس بک پہ بھی آن لائن ہیں، آپ کو کچھ یعنی اس پروگرام میں پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہمیں یعنی ہمیں کس طرح آپ کو بتاؤں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے کمنٹس آتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے کمنٹس کے بغیر یا آپ کے رائے کے بغیر ہمارا پروگرام تھوڑا سا پھیکا پڑ جاتا ہے، کچھ ادھورا سا ہے۔
بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ظاہری بات ہے ہمارے ناظرین نہیں ہوں گے تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آئمہ کرام نے فرمایا ہے کہ ہم نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا جو ہے پیغام آئمہ نے ہمیں دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلے تو یہ ظلم نہ کریں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن دوسری طرف جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حق کھا رہا ہے، آپ کا کوئی حق ضائع کر رہا ہے، تو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا، لڑنا، وہ آپ کا تقریبا میرے خیال میں فرض بنتا ہے۔ اور صبر جو ہے وہ ایک حد تک کیا جاتا ہے، اور ایک حد سے مراد میری یہ ہے کہ ایک خاص جہد میں کیا جاتا ہے صبر، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کا جو ہے حق کھا رہا ہے۔
خورم آپ کی بات کے بیچ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ ناحقی کر رہا ہے، اور ہم وہاں پہ صبر کا یعنی صبر و تحمل کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ایک طرح سے ہم اس ظالم کو شہ دے رہے ہیں۔
بالکل یہ بات بھی آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن ایک جو چیز مجھے یہاں پر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مثال کے طور پہ کوئی آپ کو جو ہے ایک تھپڑ لگاتا ہے، تو صبر کا تقاضا میرے خیال میں یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو بجائے اس کے تھپڑ لگائیں، اس کو آرام سے بولیں کہ بھائی آپ کو جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، آپ جو ہے بلا وجہ جو ہے غصے میں آ رہے ہیں۔ یہ بات کہنی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک نے تھپڑ لگا دی اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، نہیں۔ صبر کا تقاضا جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ لگا بھی دیا ہے، غصے میں کسی نے لگا دیا، کوئی غلط فہمی ہے یا غلط فہمی نہیں بھی ہے، آپ نے کوئی غلطی کر دی، اگلے نے آپ کو تھپڑ لگ دی، اب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور جو ہے جنگ و جدل شروع ہو جائے۔ یہ میرے خیال یہاں کچھ سمجھ آتی ہے صبر کا جو ہے ایک بڑا اہم یہاں پر رول۔
بالکل اس بارے میں ناظرین سے پوچھیں گے، ناظرین اگر آپ کو خورم کی بات صحیح لگتی ہے نہیں لگتی آپ ضرور ہمیں بتائیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے۔ یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین آپ نے وہ تمام طریقے تمام رستے دیکھ لیے جس سے آپ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، اب چاہے وہ پروگرام کے دوران ہو یا پروگرام کے بعد ہو، ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہم سے رابطے میں رہیں، آپ ہمیں کمنٹس کریں۔ جی خورم،
زندگی ہر انسان کر رہا ہے، کوئی جو ہے بغیر سوچے سمجھے کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، زندگی چلتی رہتی ہے، بارہ ساروں کی چلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک بات صرف یہ میں کہنا چاہوں گا جو کل بھی میں نے کی تھی، کہ آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے، جو اچھی باتیں جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں اپنی جو باتیں خوبصورت خوبصورت باتیں وہ شیئر کریں، اور ہم لوگ ہمارے ذریعے جو ہے دوسروں کو بھی پتہ چل جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین احمد چند ہی لمحات میں ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر حسین احمد جو ہیں बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब के बारे में ये भी बताते चलूँ कि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान से गोल्ड मेडल भी हासिल किया है इस फील्ड में, और बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च, मॉलिक्यूलर मेडिसिन की रिसर्च और इनमें भी मशगूल रहे हैं वो। इंशाल्लाह वो हमारे साथ स्टूडियो में चंद ही लम्हात में मौजूद होंगे, और जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि कैंसर और जेनेटिक्स या कैंसर और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका आपस में क्या रिश्ता है, क्या नाता है उसके बारे में, या अगर मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो जीन्स जिनके बारे में हम कहा जाता है डीएनए जीन्स, और इनका जो है कैंसर से क्या ताल्लुक है। बहरहाल अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो डॉक्टर साहब बाहर स्टूडियो कंट्रोल रूम में बैठे हैं, आप जो है उसको आगे ठीक कर दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, और हम जो है बहुत मुफीद बातों का जो रिश्ता है वो शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम से।
जी बहुत शुक्रिया खुर्रम, आज का मौजू तो बहुत ही दिलचस्प रखा है। नाजन आपको भी लेकर इस बारे में कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। चलते हैं नाजन हमदान की सैर करते हैं और फिर आपकी खदमत में हासिल होते हैं डॉक्टर हुसैन अहमद के साथ।
प्रोग्राम सुबह जिंदगी में फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपको लाए एक और ईरान के शहर में, जहाँ से कह सकते हैं कि सबसे पुरानी जो तहजीब थी कहा जाता है कि यहाँ से शुरू हुई, और वो है हमदान शहर। जबरदस्त चीज है, एक तरफ तो तारीखी यकीनन सबसे पुरानी तारीखी चीजें शायद ईरान में यहाँ पे आपको मिलेंगी, लेकिन उसी के साथ साथ एक खास चीजें यहाँ पर की गई है ताकि लोग आम तौर से भी तफरीह कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इस पर लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि यहाँ का जो केबल कार है उसमें बैठकर यहाँ का जो पहाड़ी है गंजनामा पहाड़ी जिसे कहा जाता है उस पर जाए। ये एक तारीखी जगह भी है और एक तफरीही जगह भी है। तो अभी चलते हैं ऊपर, रास्ते में तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये केबल कार जो आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं इसमें इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, ये तकरीबन जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे जाके खत्म हुआ 1600 मीटर का फासला है, और ज़मीन की सतह से, वैसे ज़मीन से काफ़ी ऊपर होंगे हम लोग फिर भी, लेकिन 600 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ के देखने में आ रहे हैं, मैं कहूँगा कि हमारे साथ ही आपको दिखाएं। और ये गंजनामा पहाड़ हैं और ये यहाँ पे मगरबी ईरान में मौजूद हैं, सारी जगह बहुत ही खूबसूरत जगहों पर हम आपको लेकर आ रहे हैं और लेकर जाएंगे, यकीन हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पर है इसको कहा जाता है कि निशान, आप समझिए दश्त, बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे मैंने कहा कि तकरीबन 600 मीटर का फासला है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ तफरीही चीज़ें भी हैं तारीखी लिहाज से जिसकी बहुत अहमियत है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आइए हमारे साथ। अब हम आए हैं जो कह सकते हैं गंजनामा पहाड़ियाँ हैं, जो ज़ाग्रोस पहाड़ियों के सिलसिला जो है मगरबी ईरान में उसके एक हिस्से में है हमदान शहर, वहाँ पे हम आपको लाए हैं। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ जो है हमदान शहर की और ज़्यादा खसूसियत है इसमें कि यहाँ पे इब्न सीना जैसे अशखास थे जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया तिब में, तबाबत में बहुत अहम उनका किरदार रहा। तो इस सिलसिले में यहाँ पर हम आपको लाए हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के जो कह सकते के पानी जो निकाला जाता है और खुसूसन चाय की शक्ल में गर्म बिल्कुल आपकी खिदमत में लाया जाता है, यहाँ पर हम आए देखने के लिए क्या क्या है, और हम भी थोड़ा बहुत पियेंगे, और यकीनन आपकी जगह यहाँ पे बहुत खाली है महसूस हो रही है हम लोगों को, आप लोग भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, यकीनन आपको मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यहाँ पे और चीज़ें जो हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी इन लोगों ने रखे हैं कि क्या क्या आप पी सकते हैं यहाँ पे, एक तो दालचीनी की चाय है
चलें, ये तो हर जगह पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे उसका पूरा बताया है क्या क्या उसके फवायद हैं, कैसे बनती है। और चेरी की चाय है यहाँ पे, चेरी के, आप देखिए यहाँ पे उसका बताया गया है। धनिया की चाय यहाँ मौजूद है सिनेमा, और चीज़ें भी हैं यहाँ पे, लेमन बाम इस पर लिखा है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बोराज जैसे ये हैं, और सैकड़ों और चीज़ें यहाँ पे, यानी एक पूरी किताब है, आप देखिए इतनी मोटी किताब है, आप समझिए। और ये हर चीज़ आप चाहेंगे तो आपको पूरा बताएंगे। बारबेरी है, इसके अलावा बेहलीमू है कि यानी ख़ास किस्म का यहाँ पे फल होता है, उसका भी है, और यानी उसकी पत्तियाँ, उनकी चाय बनाई जाती है। ग्रीन टी तो चले हर जगह आपको मिल ही जाएगी। एक खट्टी होती है जो ख़ास किस्म के यहाँ पे पौधे मिलते हैं, उसकी यानी उससे वो बनाई जाती है, उसको मिलाया जाता है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कि यानी सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म की चाय हो, फ़ायदे के यानी जिस्म के लिए, जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसमें पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें बताई गई हैं जो सिर्फ ग्रीन टी पीने से आपको पहुँच सकता है उसका, या जिनसिंग अगर आप उससे चाय पियेंगे तो इसमें क्या क्या फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर इसमें कहा गया है कि बदन ज़्यादा ताकतवर हो जाता है जिनसिंग चाय पीने से, और इसके अलावा बदन में ये जो सारे स्ट्रेस और जल्दी बुढ़ापे, इन सब का वो सब कम हो जाता है, असरात कम हो जाते हैं, ख़वातीन के लिए खुसूसन बहुत मुफीद है, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें ये सब दिखाती हैं कि इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ईरान में। और न सिर्फ ये चीज़ें बिल्कुल एक पुराने तिब के तौर पर हटाई नहीं गई हैं और उसको अलग नहीं कर दिया गया है, बल्कि उसको बहुत ही एक जज़्ज़ाब शक्ल में उसको लोगों के सामने पेश किया जा रहा है ताकि वो भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। हम लोग भी इसमें से एक चुन के साथ में पियेंगे, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, फ़ज़ा में भी बहुत ही खूबसूरत सी बू महक रही है इस वक्त, और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये जो ये कह सके इस हिस्से के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे पिलाते हैं लोगों को और उसके क्या क्या फ़वाद हैं। मान सालों मार्ज में कौन छः चीज़ों की गुजरती मारूँगी, ये चीज़ खोल लिया कि बस में मेगी।
برای پایین آوردن فشار خون خیلی خوبه، چربی خون رو کاهش میده، تصفیه کننده خونه و برطرف کننده تشنگی.
اسمه یه بتاری این که یه چریز هست اور یہ خشک چیریز ہیں اسی لیے اتنی چھوٹی یہ بتا رہی ہیں کہ اس میں ایک تو خون کی صفائی کے لیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو مختلف طرح کی بیماری ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی ہم لوگ پوچھیں گے ان چیز ہے
گلگاب زبان ہے تصفیه کننده خون برای جلوگیری کنه از فشارهای مغزی و قلبی دروغ رو باز میکنه آرامش بخش
اس میں یہ ہے کہ اب اس کا نام وہاں پہ لکھا ہوا تھا بوراج لیکن اگر دقیق نام ہے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ رگوں کو کھول دیتا ہے
جی ناظرین آپ کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو حمدان کی سیر پسند آئے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر ناظرین چلتے خورم کے پاس چونکہ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں جی خورم
بہت شکریہ حمدان کی سیر کروانے کا بھی بہت شکریہ جی ناظرین جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین احمد چند ہی لمحات میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں تو چلتے ہیں ان سے ملاقات کرنے ڈاکٹر صاحب سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے
سب سے پہلے تو میں سحر ٹی وی اور اس کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں
بہت
کہ مجھے اتنے اہم ٹاپک پہ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا موضوع جو ہے وہ یقیناً بڑا ہی اہم موضوع ہے اور ایسا موضوع ہے کہ صرف زیادہ تر لوگ صرف اس کا نام ہی جانتے ہیں عام لوگوں میں اگر آپ دیکھا جائیں تو مختلف بیماریوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن جب بھی بات آتی ہے جینیٹکس کی یا جینز کی یا ڈی این اے کی یا آر این اے کی وہ بس صرف یاد آ جاتا ہے جب بایولوجی میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہائی اسکول میں جب پڑھا تھا بس اس کے بعد تو خیر جو ہے بہرحال جو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے لیکن جو نہیں جڑے ہوئے وہ بہرحال تو ڈاکٹر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ ہے کیا اس کی کہانی کیا ہے
بیسیکلی آر خلیے میں ایک خاص नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उस क्रोमोसोम में को कहते जीनोम,
ठीक है।
उस जीनोम में मुख्तलिफ किस्म के जीन होते हैं, अब तक जो है ना ह्यूमन में 25,000 टू 30,000 तक जीन्स डिस्कवर हो चुके हैं,
ठीक है।
ये जीन मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन को कोड करते हैं,
ठीक है,
और ये
मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाने में काम देते हैं,
हाँ, ये है? जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन कोड होते हैं,
ठीक है,
और इस जीन में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा और कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा,
ठीक है।
अगर किसी तरह की भी एरर इस जीन में आ जाए तो वो प्रोटीन जो है ना वो एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाते हैं और वो सेल जो है ना अपना फंक्शन नहीं कर देगा।
यानी जो कोड से आपका मुराद ये है कि सारी जो जो तफसील है हमारे बदन की वो उनके अंदर भरी हुई होती है,
हाँ बिल्कुल।
अच्छा।
सारी जो तफसील है अमीनो एसिड की, प्रोटीन बेसिकली जो अमीनो एसिड से बना होता है और ये अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन ये इस डीएनए में जीन में कोडेड होती है इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस,
ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है, सुनने में आया है कि बीमारियों का ताल्लुक जो है ये जो जड़ है बीमारियों की वो ये सारे जीन्स ही हैं, ऐसा है या नहीं, ऐसी बात की जाती है?
बेशक, क्योंकि जीन हमारा बदन जो है ना वो काम करते हैं प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन तो या तो बॉडी का बर्ड जिस्म का साख्त बनाता है या कोई फंक्शन करता है,
ठीक है।
तो ये सारी प्रोटीन जो है ना वो तो इसको सारी इंफॉर्मेशन तो जीन में कोडे होते हैं,
ठीक है।
अगर उस जीन में किसी किस्म का एरर आता है तो प्रोटीन नहीं बनता, अगर प्रोटीन नहीं बना तो बदन जो है ना अपना फंक्शन नहीं कर देता, जाहिर बात है सारी बीमारियों का ताल्लुक इस जीनोम से जीन से ही निकलता है,
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहा अक्सर ये भी बात की जाती है कि माँ बाप में एक बीमारी है तो वो बच्चों में आएगी या उनके बच्चों में आएगी, ये भी जीन से जुड़ा हुई चीज़ है कोई?
हाँ बिल्कुल, जीन जो है ना वो बेसिकली दो सूरत में होता है, दूसरों तो में इस तरह होता है कि एक इसको कहते हैं डोमिनेंट फॉर्म, एक को कहते हैं रिसेसिव फॉर्म।
हाँ, एक जो डोमिनेंट यानी नजर आ रही है बर्जस्ता जो है, एक जो रिसेसिव जो छुपी हुई सी है, सही, ठीक।
अगर डोमिनेंट फॉर्म में जीन हो तो जो है ना वो अगर एक ही दफ़ा भी हो तो, अगर वो अकेला भी मौजूद हो तो बीमारी आ जाती है,
यानी बच्चों में, ट्रांसफर हो गई है, ठीक।
अगर ये जीन रिसेसिव फॉर्म में हो,
ठीक है,
तो ये तब आएगा जब ये इसके दो डोज एक माँ से एक बाप से आ जाए, तो तब जो है ना ये बीमारी आ सकती है अपने वालिदैन से बच्चों के। तो अब अगर ये वालिदैन में अगर एक ही जीन और जो ना जीन दो सूरतों में दो
जुफ्त में होते हैं,
ठीक है। तो अगर एक जो है ना माँ से आता है और एक बाप से आता है, अगर एक इफेक्टेड है, अगर माँ इफेक्टेड है या बाप इफेक्टेड है, तो अगर इसमें कुछ इस तरह आ जाए कि अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो एक ही हो
डेड या बाप की तरफ से या माँ की तरफ से दो बीमारी होगी, ठीक।
और अगर रिसेसिव फॉर्म में हो तो वो डेफिनेटली कैरियर,
ठीक है,
वो बच्चा फिर कैरियर हो जाता है।
लेकिन अगर दोनों माँ बाप की तरफ से रिसेसिव भी आ जाए तो तब तो बीमारी हो जाएगी,
नहीं रिसेसिव अगर दोनों आ जाए ना,
हाँ,
तो फिर बीमारी हो जाएगी,
लेकिन अगर एक आ जाए तो वो उसमें ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने भी डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की, बड़ा अहम मौजू है, और एक मिसाल मैं यहाँ पर आपको दूंगा कि ईरान में जब दो शख्स शादी करने वाले होते हैं तो उससे पहले यहाँ पर एक इनकी जो है एक टेस्ट लिया जाता है इनसे, और उसमें जो है देखा जाता है कि थैलेसीमिया और ये जो बीमारियां जिनका खास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है और जो अगली नस्ल में जाती हैं, इनका टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है कि रिसेसिव है डोमिनेंट है। ये चीज़ें आपके ख्याल में पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी हो रही हैं कि लोग टेस्ट करवाते हैं शादी से पहले कि भाई यार कहीं बीमारी बच्चे में ना आ जाए?
अभी बहुत सारे डेवलप कंट्री में ये कंसेप्ट तो बहुत आया, क्योंकि शादी करने से पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आपके बच्चे जो है ना वो किस तरह होंगे, क्योंकि उसमें किसी जीनेटिक बीमारी का अंदेशा तो नहीं है,
सही है।
तो ये इस तरह के टेस्ट जो है ना बहुत सारे डेवलप कंट्री में
फायदा भी है डॉक्टर साहब इनका, यानी आपके ख्याल में ये करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए?
डेफिनेटली करवाने चाहिए, क्योंकि अगर करवाने अगर आप वक्त पे टेस्ट नहीं करवाए ना तो बाद में आपकी न्यू जनरेशन में प्रॉब्लम,
ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं आहिस्ता सा आपने थोड़ा सा मौजू की तरफ, आपने बताया कि आप जो है कैंसर और जो जेनेटिक्स है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कैंसर के बारे में तो डॉक्टर साहब हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या बीमारी है और किस तरह है, बहरहाल इसके ऊपर भी आप नज़र डाल सकते हैं, और ये कि जीन्स का इससे क्या ताल्लुक है भी सही या नहीं है, इसके बारे में जो है आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को?
कैंसर जो कि बेसिकली बीमारी ही जीन की है।
अच्छा।
क्योंकि कैंसर सेल में, कैंसर और नॉर्मल सेल में यही फ़र्क होता है कि कैंसर अनकंट्रोल हो जाती है, उसकी तकसीम अपने आप से हो जाती है, तो मुख्तलिफ किस्म के जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन जो है ना वो उस जीन्स की इफेक्ट की वजह से कैंसर हो जाता है।
ठीक है,
जिस तरह दो किस्म के जीन सेल में होते हैं, इसको एक को कहते हैं आंको जीन्स और एक को कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन।
ठीक है,
आंको जीन्स का काम होता है और सेल को डिवाइड करता है, अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए तो सेल जो है ना वो अपनी मर्जी से तकसीम होना शुरू हो जाता है और फिर सेल की मशीनरी का इस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है।
ठीक है,
और एक कहता है एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, अगर नॉर्मल हालात में उसका ये फंक्शन होता है कि ये ट्यूमर को सप्रेस करता है।
ठीक है,
अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए तो ट्यूमर सेल का अपने ट्यूमर पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और ये खुद बहुत एबनॉर्मल हो जाती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर खुद जो है ये कहा जाता है कि जब एक जो है एबनॉर्मल डिवीजन हो रही है, एबनॉर्मल डिवीजन हो रही है किसी भी सेल की और वो जो है किसी और सेल में तब्दील हो रहा है, तो ये और सेल में जो तब्दील हो जाता है ये क्या कोड में तब्दीलियाँ हो जाती हैं, क्या कोई चोर शोर घुस जाते हैं वो तब्दील कर देते हैं, क्या होता है क्या है?
असल में नॉर्मल सेल और सेल में तब्दील इस तरह होता है कि नॉर्मल सेल की ये खसूसियत होती है कि वो खास डिवीजन हो, वो खास नंबर तक डिवीजन कर सकता है, उसके बाद जो है ना वो अपनी डिवीजन स्टॉप कर देता है और अगर उसके में कुछ इस तरह की एरर हो तो वो मर जाता है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल की ये खसूसियत है कि एक तो इसकी डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, तो उसका सेल के मशीनी का उस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और दूसरे उसमें जो है ना वो उसके तवील मुद्दत तक उसकी जिंदगी हो जाती है।
सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को हम आगे इंशाल्लाह चलाएंगे। यहाँ पर छोटा सा हमने एक जो है वक्फा लेना है और वक्फे के लिए हम जाएंगे रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब हमें जो है कहाँ पर लेकर।
बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू चल रही है। वक्फे में जाने से पहले नाज़रीन, अली नादर साहब का और जावेद अख्तर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी हमारे प्रोग्राम को लाइक करने का, पसंद करने का। जी नाज़रीन, यहाँ हमें देखना एक छोटा सा वीडियो क्लिप और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। जी नाजन, आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाजन आप प्रोग्राम देख रहे हैं सुबह ज़िंदगी और हमारे साथ मौजूद डॉक्टर हुसैन अहमद साहब, चलते हैं उनकी खिदमत में।
जी बहुत शुक्रिया, और आपने जो है बड़ा खूबसूरत किस्म का ब्रेक हमें दिलवाया, थोड़ा ताज़ा हो गया, हम लोग खाने पीने की चीज़ें भी हम लोग देख ली, लेकिन आप लोग दोबारा चलेंगे। हम लोग जो देखें कहते हैं कि तफरी वो भी ज़रूरी होती है लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, तो अब हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये जो आपने ऑनको जीन्स की बात की और दूसरे कौन से जीन्स डॉक्टर साहब आपने बताया?
ट्यूमर सप्रेसर जीन।
हाँ, ट्यूमर सप्रेसर, ये ट्यूमर जो हो गया वो कैंसर ही हो गया, जिसको हाँ। सादी जबान में हम कह सकते हैं कैंसर, जो कैंसर को दबाने वाले जीन हैं और दूसरे ऑनको जीन है। हाँ। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इसके इनके बारे में बताएं, क्योंकि ये जो है काफ़ी मुझे भी थोड़ा सा मसला हो रहा है इनको समझने में।
ऑनको जीन जिस तरह के इस नाम से ज़ाहिर है कि कैंसर कॉजिंग जीन है
ऑनको, क्योंकि ऑनकोलॉजिस्ट जो है वो कहा जाता है कि जो डॉक्टर होता है कैंसर का।
तो इसी वजह से इसका नाम ऑनको जीन है। तो इस बेसिकली इस ऑनको जीन का फंक्शन होता है, नॉर्मली इसको प्रोटो ऑनको जीन कहते हैं, नॉर्मल सेल में इसको प्रोटो ऑनको जीन कहते हैं। तो इस जीन्स का फंक्शन होता है सेल की डिवीजन को मेंटेन करना, कि कब सेल ने डिवाइड होना है, कितना डिवाइड होना है और किस तरह डिवाइड होना है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो ये समझते थे कि जो सेल जो डिवाइड होता है ये खुद ब खुद डिवाइड होता है, ये क्या सेल में इसको कोई खुलिए में कोई इसको कहता है कि भाई तुम डिवाइड हो?
हाँ, इसमें बिल्कुल इसमें इसके जीनोम में ये इन्फॉर्मेशन कोड होती है कि इसने कब डिवाइड होना है, कितना डिवाइड होना है और कब जो है ना अगर इसमें कुछ इस तरह की इरर आ जाए तो खुद ब खुद जो है ना सेल मर जाता है।
अच्छा, इसका मतलब है कि सेल के अंदर खुलिए के अंदर खुद एक ब्रेन जो है वो काम कर रहा है और उस ब्रेन का नाम जो है वो जीन
है।
अच्छा, एक हर सेल के पास, हर खुलिए के पास एक जहन है,
हर खुलिए का, हाँ, हर खुलिए का एक जहन है और ये जहन जो है ना ये सारे खुलियों में एक ही है।
अच्छा,
बाकी अभी कुछ खुलिए जो है ना एक तरह के बन जाते हैं, कुछ जो है ना दूसरे तरह के बन जाते हैं, ये उसमें कुछ जीन जो है ना स्विच ऑफ हो जाते हैं और कुछ जीन स्विच ऑन होते हैं। जिस तरह अगर आपके अगर चेहरे को देखो, अगर इसके सेल को देखो तो इसमें वो जीन्स ऑन हो जाते हैं जो चेहरे की साख्त को बनाते हैं। अगर आप स्टोमच के सेल को देखो तो उसमें वो जीन्स स्विच ऑन है जो स्टोमच के स्ट्रक्चर को बनाते हैं।
यानी हर खुलिए में सारे जीन मौजूद हैं, लेकिन अगर वो जिल्द के हैं तो जिल्द में उसके जिल्द वाले जीन जो हैं वो ऑन हो जाएंगे, लेकिन अगर वो दांतों में तो दांतों वाले। अच्छा, ये बड़ी डॉक्टर साहब बड़ी जो है मजे की कहानी है ये। हाँ। अच्छा,
तो बस ये डिपेंड करता है कि कौन से जीन स्विच ऑन है और कौन से जीन स्विच ऑफ है। तो हर सेल जो है ना वो जिस जो साख बनाते उस हिसाब से उसके जीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाते हैं।
डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक जगह जो है जहाँ पर मसलन आंख बननी है वहाँ पर जो है वो दांतों के जीन ऑन हो जाए?
तो बेसिकली हो सकता है अगर हम इसको खुद जो है ना इंट्रोड्यूस कर सके।
अच्छा,
अभी बहुत सारे न्यू फील्ड आ रहे हैं जिस तरह वो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इसी की बेस पे है, क्योंकि सेल का तो सारे जीनोम अन है। अगर आपने अभी किसी स्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो क्या करना है, अगर आपने किडनी को जनरेट करना है तो क्या करना है, उसको वही इन्वायरमेंट देना है जो जिसमें वो जीन्स अन हो जाए,
यानी किडनी का जीन जो है उसको ऑन करे,
उसको एनवायरनमेंट फॉर इट, तो डेफिनेटली आप किडनी प्रोड्यूस कर सकते हो।
ठीक, डॉक्टर साहब गुफ्तगु इंशाल्लाह जारी रखेंगे। हम यहाँ पर जाने रुबाब के पास, कुछ रुबाब की बातें भी सुनते हैं, जाके हम लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुरा। मेरा भी जो आज का मौजू है वो आपके मौजू से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन मैंने कैंसर के बारे में थोड़ी मालूमात निकाली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें ये था कि कैंसर की जो बीमारी है वो 100 किस्म की होती हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पे असर कर सकती हैं। 2008 की मिली रिपोर्ट पे ये खबर मिली थी कि 7.6 करोड़ लोग जो थे, मिलियन जो लोग थे, वो कैंसर की वजह से ही उनकी इंतकाल हुआ था। कहते हैं कि 70% जो कैंसर जो है वो जो तरक्की जो ज़ेर तरक्की जो ममालिक होते हैं, गरीब ममालिक, उनमें ही पे पाया जाता है, जहाँ पे यानी खाने पीने के ऐसे जो मसाइल पेश आते हैं कैंसर उन ममालिक में होता है। 5 वो जो कॉमन जो है, यानी जो कॉमन कैंसर जिसमें जो मर्द हजरात में होते हैं उनके अंदर है, लंग यानी हमारे फेफड़ों का कैंसर, स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर, लिवर का कैंसर है हमारा, और कॉलोरेक्टल कैंसर जो है वो मर्द हजरात को होता है और उसकी वजह से उनका इंतकाल होता है। ख्वातीन में जो ज़्यादातर कैंसर पाया गया है वो ब्रेस्ट कैंसर है, सीने का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर और सर्विकल कैंसर जो है वो ख्वातीन में जो मौत का सबब बनता है वो ये कैंसर है। कहते हैं कैंसर की जो एक और जो मखसूस वजह है वो है टोबैको, यानी तम्बाकू नोशी का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर की मेन जड़ है खाने पीने के लिए, जो आप खाने पीने का इस्तेमाल।
पान का भी बताती चले यहाँ पर थोड़ी सी जो है बहस को कैंसर की यूज से निकालते
हैं। पान का भी लिखा था कि पान चबाने से जो आपके जो मुंह का जो कैंसर है, ओरल कैंसर जो आपको वो हो सकता है और बहुत खतरनाक कैंसर है। फिर कहा गया है जो 30% जो हमारे जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, 30% यानी हम अपने कैंसर को होने से बचा सकते हैं, आप तम्बाकू नोशी मत कीजिए, आप एल्कोहल मत लीजिए, खाने पीने का अपना खास ख्याल रखिए, और आपकी जिंदगी अगर एक्टिव हो तो आप कैंसर को किसी हद तक होने से आप बच सकते हैं। और जो ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें कैंसर जो होता है वो अक्सर क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है, और अगर हम क्रॉनिक इन्फेक्शन के आगे यानी एक रोकथाम हो जाए तो हम कैंसर से तरक्की पजीर ममालिक में भी बच सकते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा वक्फ़ा और फिर कुछ खाने पीने की बातें करते हैं। जी नाज़रीन, आपका फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आपको बात कर रहे थे कुछ खाने पीने की, सब्जियों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। हमेशा हमें रोका बोला जाता है कि भाई सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्यों करना चाहिए, आज मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। कहते हैं बैंगन जो है वो कैंसर से लड़ने में माहिर है, यानी कैंसर के खिलाफ एक जद्दोजहद करता है, और जिनको झुर्रियों की बीमारी है, जो झुर्रियों की मुश्किल है उनका भी ये डट के सामना करता है। टमाटर कहते हैं कैंसर को बढ़ने से रोक सकता है, और जितनी भी दिल की बीमारियाँ हों टमाटर उनमें भी काफ़ी मुफीद साबित होता है। बंद गोभी के बारे में कहा है बेहतरीन जरिया है विटामिन सी का। गाजर आपके दांत और जो आपके मसूड़े हैं उनको मजबूत रखता है, इसके अलावा हमने सुना है कि वो अच्छी आपकी नज़र को भी काफ़ी ताकतवर करता है, और टिश्यूज जो आपके ख़राब हो गए उनको भी रिपेयर करता है। खीरे के बारे में कहा जाता है जिनको कब्ज़ की शिकायत हो खीरा खाने से उनकी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। प्याज के बारे में कहा गया है कि प्याज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत बहुत मुफीद साबित होता है। सलाद के पत्तों के बारे में ये कहा गया है कि वो बोन मास को बढ़ाता है। फिर बात आती है ब्रोकली की, ब्रोकली आपको कैंसर से बचाता है। शकरकंद के बारे में ये कहा गया है कि जिनकी रात की जो देखने की जो मसाइल होते हैं, अंधेरे में देख नहीं सकते, उनके लिए काफ़ी मुफीद है। और शिमला मिर्च के बारे में ये कहा गया है जिनको मसल्स के पेन हो यानी मसल्स में दर्द हो उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित है। जी नाज़रीन, चलते हैं फौरन के पास।
बहुत शुक्रिया रुबाब। और ये जो रुबाब ने भी कहा कि रात के देखने का, बिल्कुल ये ऐसा ही होता है कि कुछ लोग जो है अंधेरे में थोड़ा बहुत जो नज़र आता है, लेकिन कुछ लोगों को अगर हल्का सी भी रोशनी कम हो गई है यानी शाम का टाइम हो रहा है तो उसी टाइम पे जो है उनको दिखने में जो है मुश्किल पेश आ जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रुबाब, और बहरहाल हम यहाँ पर मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस जो बुरी बीमारी है कैंसर की, इससे हम सब को जो है अपनी अमान में रखे। बहरहाल डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मौजू से हटते हैं और आ जाते हैं, हमारा हफ्ते का मौजू है दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना। ये जीन्स वगैरह की से बाहर आते हैं, देखें जीन्स वगैरह एक दूसरे का हकूक का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, आपके ख्याल में कितनी अहमियत है इस बात की?
हमारी ज़िंदगी के अनुसार जो है ना वो दो बातों पे, एक हुकुल्ला और एक होता है हुकुल्लिबाद।
बिल्कुल,
जो दूसरों के हुए वो हुकुल्लिबाद में आते हैं।
जी बिल्कुल,
बेसिकली इंसान के दूसरे इंसान पे जो है ना 5 जो है ना बुनियादी हकूक है, उसमें एक है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी शिफा के लिए जाओ, उसकी उसके पूछने के लिए जाओ, अगर वो जो है ना चीखे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, वो दूसरा जो है ना वो या रहमकुल्लाह
जी बिल्कुल
कहेगा,
ठीक है,
और फिर जो है ना वो दूसरा जवाब देगा कि यहदीकुमुल्लाह,
सही।
और ये दूसरा अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो जाओ,
ठीक है।
तो ये अगर हम अब दूसरे इंसानों के हकूक का ख्याल रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी दोनों दुनियावी और आखिरी उखरवी ज़िंदगी दोनों कामयाब हो सकती है,
सही। तो यही नहीं, आपके कहने का मतलब ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना जहन में नहीं आता, हम लोग जो है दूसरे मौजू में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल में हमारे साथ जो है फ़ोन लाइन पे हमारे एक कॉलर मौजूद हैं, और मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अगर तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी आप अपना नाम बताना चाहेंगे?
मौलाना अली अब्बास खान साहब।
जी मौलाना अली अब्बास खान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ मौलाना साहब आपको प्रोग्राम में।
जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी मौलाना साहब, हमारा हफ्ते का मौजू आपको मालूम है, दूसरों के हकूक का ख्याल रखना। यहाँ पर हमने अभी डॉक्टर साहब से भी पूछा और उन्होंने भी कुछ दिलचस्प चीज़ों की तरफ इशारा किया, तो मौलाना साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में?
बहरहाल हुकूक उन्नास और दूसरों के हुकूक के बारे में इस्लाम में काफ़ी रवायात मौजूद हैं
जी।
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मुअल्ला इब्न खुनैस ने रवायत की है,
सही।
और बड़ी अजीब रवायत है कि जब वो हुकूक के यानी दूसरों के हुकूक के बारे में सवाल करते हैं तो इमाम फरमाते हैं कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर 70 हक है।
अच्छा।
और फिर इमाम कहते हैं मैं इसमें से सिर्फ 60 हक तुम्हारे लिए बयान करता हूँ,
सही।
और एक बहुत छोटा सा हक जो हजरत ने गिनाना शुरू करते हैं, कहते हैं एक हक ये है कि जब तक के तुम्हारा भाई भूखा है तुम पेट भर के खाना मत खाओ।
अच्छा।
और फिर दीगर हुकूक को गिनाते हैं,
ठीक।
और लेकिन तमाम हुकूक में अगर हम आके गौर करें तो एक नुकता ये है कि इंसान दूसरों के बारे में उसी चीज को चाहे और ख्याल रखे कि जो अपने बारे में चाहता है,
ठीक है।
और तकरीबन यानी असल जो दूसरों के हक का एक खुलासा हम आगे कर सकते हैं और उसको बयान कर सकते हैं वही है कि मुआशरे में इस बात का ख्याल रखना कि दूसरे इंसानों को भी जीने का हक है और हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि कभी कभी हम अपनी निजी जिंदगी में इतना मसरूफ हो जाते हैं और उसमें आके इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मुआशरे में भी कुछ लोग हैं कि जिनको हमें जिनका हमें ख्याल रखना है,
सही है।
मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने जब मालिक अश्तर को वो नामा दिया था और आपको मिस्र का हाकिम बना के भेजा था
जी,
तो आपने कहा था कि मालिक अश्तर देखो इस बात का ख्याल रखना कि जहाँ तुम जा रहे हो वो लोग या तो तुम्हारी तरह मुसलमान हैं,
ठीक है,
और अगर मुसलमान नहीं है तो वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। यानी इमाम इस बात की तरफ इशारा करना चाह रहे थे कि कहीं ये समझ के कि वो मुसलमान नहीं है तुम उनके हक को भूल मत जाना,
सही।
अगर इस हवाले से तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं आ रहा है कि वो मुसलमान है तो इस हवाले से जरूर तुम्हारे ऊपर हक बन रहा है कि वो तुम्हारी तरह इंसान है,
सही।
और तुम्हें उनके बारे में सोचना पड़ेगा और उनका ख्याल रखना पड़ेगा,
सही। अच्छा मौलाना साहब यहाँ पर मुख्तसर सा तरह बताइएगा कि अगर एक माशरे में लोग ऐसे हो जाएं कि बेहिस हो जाएं और वो एक दूसरे के हुक का ख्याल ना रखें सिर्फ अपने बारे में सोचें तो वो माशरा किस तरफ जाएगा आपके ख्याल में?
ये सीधा सीधा उस माशरे का नतीजा ये होगा कि दूरियां आपस में बढ़ती चली जाएंगी और धीरे धीरे इसमें इख्तलाफ शुरू हो जाएगा,
ठीक।
और कुरान ने भी बहुत सी मिसालें दी हैं कि बहुत से मुआशरे इसी वजह से खत्म हो गए क्योंकि उनके अंदर आपस में इख्तलाफ बढ़ता चला गया,
सही।
इख्तलाफ बढ़ने की एक वजह यही होती है कि एक दूसरे के हुकूक की रियायत नहीं की जाती,
ठीक।
जब हुकूक की रियायत नहीं होती है तो एक दूसरे से नाराजगी होती है, आपस में फासला बढ़ता है और धीरे धीरे ये मुआशरा टूटने लगता है, इसके अंदर दरार पड़ने लगती है,
सही, ठीक। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया और एक बहुत अहम मौजू की तरफ जो है आपने जो है उस पर नजर डाली, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब,
शुक्रिया
जी। जी बहरहाल मौलाना साहब ने जो है एक बहुत खूबसूरत बात आखिरी में जाते हुए कर दी और वो ये कि अगर लोग बेहिस हो जाएं और एक दूसरे का ख्याल रखना छोड़ दें तो माशरा जो है वो टूट जाता है। बहरहाल यहाँ पर हमने जो है एक छोटा सा वक्फा लेना है और उसमें एक खूबसूरत सा एक तराना सुनेंगे, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन आपने एहसान ख्वाजा अमीर साहब की आवाज़ में तराना सुना, बखुदा के बगैर चलते हैं खुर्रम के पास।
जी बहुत शुक्रिया और खूबसूरत सा तराना आपने हमें सुनाया हमारे नाज़रीन को, बड़ा मज़ा आया। जी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उस डॉक्टर हुसैन अहमद। डॉक्टर साहब ट्यूमर और कैंसर का फ़र्क क्या है?
जिस तरह के मैंने आपको कहा कि कैंसर जो है ना, जब सेल के एबनॉर्मल हो जाए तो उसको कहते हैं कैंसर। अब अगर ये एबनॉर्मल सेल किसी खास जगह पे मौजूद हो और उसकी फैलाव ना हो रही हो तो उसी हालत में उसको कहते हैं ट्यूमर। अगर अगर इसके इस एबनॉर्मल सेल की फैलाव शुरू हो जाए तो फिर उसको कहते हैं कैंसर। तो जो जो ट्यूमर जिसकी फैलाव न हो रही हो उसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और जब इसका फैलाव शुरू हो जाए तब इसको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना वो बेसिकली है कैंसर।
हाँ, यानी ट्यूमर की दो टाइप्स हैं, उसमें एक टाइप जो मेलिग्नेंट है वो कैंसर में तब्दील हो जाती है, उसका नाम हम तब्दील कर सकते हैं कैंसर में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ट्यूमर इसका मतलब खतरनाक नहीं है?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ट्यूमर जो है ना वो आप इसकी इजीली सर्जरी करके आप रिमूव कर सकते हो,
ठीक है।
लेकिन कैंसर जो है ना वो उसकी सर्जरी, उसकी जितने भी आजकल की जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर है तो उस पर वो ट्रीट नहीं हो सकता ज़्यादातर, क्योंकि अगर उसकी आपने सर्जरी करनी किसी एक जाएगी तो डेफिनेटली जाहिर बात है वो फैल चुका होता है, तो आपने आर जगह की तो सर्जरी नहीं कर सकते, तो जो जो फैल जाते हैं तो उसकी जो है ना ट्रीटमेंट पे मुश्किल हो जाती है। ट्यूमर जो है ना उसकी ट्रीटमेंट इजी।
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक आखिरी जुमला मैं आपसे पूछना चाहूँगा और इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम भी करेंगे कि जेनेटिक्स जो है वो कितना काम कर रही है कि कैंसर की बीमारी को रोका जाए?
आज तक की जितने भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो यही हो रहा है कि कैंसर सेल को ख़त्म किया जाए,
ठीक है।
अभी तक ये नहीं हुआ है कि जो वजह है उस वजह को ख़त्म किया जाए।
वजह तो
वजह वो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सब वो जो ऑन्कोजीन है वो उसमें जो तब्दीली आ जाती है उस तब्दीली को किस तरह जो है ना वो रिवर्स करना है और उस तब्दीली को किस तरह रोकना है, तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वही है और इस पे रिसर्च जारी है, तो बहुत जल्द ही इसका जो है ना।
डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हम दरख्वास्त करेंगे आपसे कि यही जो है कि ये जो रिसर्च हो रही है मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ बीमारियों पे, इस पे भी जो है हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अगले प्रोग्रामों में आप बताएं। और बहरहाल अभी जो है डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत मुफीद नुकात की शक्ल में आपने हमारे नाज़रीन को थोड़ा बहुत जो है बताया कि जेनेटिक्स है क्या और उसका क्या ताल्लुक है, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में जो है तफसीलन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। चलते हैं रुबाब के पास। जी रुबाब
जी, खुर्रम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी नाज़रीन, वक्त ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कल के हमारे मेहमान होंगे फरशीद रफ़ी साहब, घरेलू मसाइल के माहिर हैं, और हम अपना जो हफ्ते का मौजू है इसका खुलासा करेंगे, उनकी नज़र से उनकी नज़रात क्या है इस बारे में उनसे ज़रूर पूछेंगे दूसरों के हुकूक के बारे में। नाज़रीन, इसी दुआ से प्रोग्राम को अख्ताम पर पहुँचाते हैं कि आपकी खुशी के लम्हात और आपके चेहरे पर खूबसूरत सी जो मुस्कुराहट है कभी भी ख़त्म ना हो, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम रिस्क हलाल कमा सके। यहाँ पर खुर्रम को, डॉक्टर साहब को और मुझे, हम सबको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।